नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम अपने इस अध्ययन में पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से मत्ती रचित सुसमाचार नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रवेश के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको मेरा नमस्कार। मित्रों, आज के अध्ययन में हम मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक की रूपरेखा और यीशु मसीह की वंशावली और यीशु का कुंवारी से जन्म के विषय में देखेंगे। तो मित्रों, आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार की रूपरेखा को देखें। हम इसका विभाजन अध्याय के अनुसार करेंगे। अध्याय इस प्रकार से हैं। पहला अध्याय वंशावली और यीशु का कुंवारी से जन्म का लेख। दूसरा अध्याय ज्योतिषियों का आना, मिस्र को भागना, नाजरेत में वापस आना। तीसरा अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा दाता, राजा के आगे चलने वाला, राज्य की घोषणा करना और यीशु जो राजा है बपतिस्मा देता है। चौथा अध्याय निर्जन प्रदेश में राजा की परीक्षा लेना, कफरनहूम में सेवा आरंभ करना और शिष्यों को बुलाना। पांच, छह और सात अध्याय पहाड़ी उपदेश। पहला, राज्य के विषयों का स्वयं से संबंध, पांच अध्याय के एक से सोलह पद तक। दूसरा, राज्य के विषयों का व्यवस्था के साथ संबंध, पांच अध्याय सत्रह पद से अड़तालीस पद तक। तीसरा, राज्य के विषयों का परमेश्वर के साथ संबंध, छह अध्याय एक पद से चौंतीस पद तक। चौथा, राज्य के बच्चों का एक दूसरे के साथ संबंध, सातवां अध्याय एक से उनतीस पद तक। आठवां अध्याय राजा के छह चमत्कार को उसकी गतिशीलता को प्रदर्शित करते हैं ताकि पहाड़ी उपदेश में दिए गए नीति शास्त्र को लागू कर सके। नौवां अध्याय छह और चमत्कार करते हैं, मती का बुलावा, फरीसियों के साथ संघर्ष। दसवां अध्याय यीशु बारहों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार इस्राएल राष्ट्र को सुनाने के लिए नियुक्त करते हैं। ग्यारहवां अध्याय यूहन्ना के शिष्यों द्वारा पूछताछ करना, अपश्चातापी शहरों को अस्वीकार करना, हर एक व्यक्ति के लिए नया आमंत्रण देना। बारहवां अध्याय धार्मिक अगुओं के साथ यीशु का अंतिम टकराव और विरोध। तेरहवां अध्याय स्वर्ग के राज्य के दृष्टांत का रहस्य। चौदह अध्याय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा जाना, यीशु का 5000 लोगों को भोजन खिलाना, समुद्री तूफान में शिष्यों को भेजना, पानी पर चलकर उनकी ओर जाना। पंद्रह अध्याय यीशु शास्त्री और फरीसियों की निंदा करते हैं, कनाने स्त्री की बेटी और बहुतों को चंगा करते हैं, 4000 लोगों को भोजन खिलाते हैं। सोलह अध्याय सदूकी और फरीसी के साथ विरोध, शिष्यों का पाप स्वीकार करना, पतरस बोलने वाला, यीशु पहली बार उन्हें कलीसिया और अपनी मृत्यु के पुनरुत्थान के विषय में बताते हैं। सत्रह अध्याय रूपांतरण होना, दुष्टात्मा से ग्रसित लड़का, कर देने के लिए चमत्कारी तरीके से पैसे का प्रबंध करना, और अठारह अध्याय छोटे बालक, खोई हुई भेड़ें, आने वाली कलीसिया, ये आचार्य व्यवहार, क्षमाशीलता पर दृष्टांत। उन्नीस अध्याय विवाह और तलाक के लिए परमेश्वर का मानदंड, छोटे बालकों को आशीष देना, धनी नवयुवक शासक, आने वाले राज्य में शिष्यों का स्थान। बीसवां अध्याय दाग के बारे में मजदूरों का दृष्टांत, यीशु अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में चौथी और पांचवी बार बताते हैं। याकूब और यूहन्ना की माता आदरपूर्ण स्थान के लिए निवेदन करती है। यीशु दो अंधों की आंखों को ठीक करते हैं। इक्कीस अध्याय राजा अपने आप को भीड़ के सामने और अंत में राष्ट्र के सामने प्रकट करते हैं, मंदिर को शुद्ध करते हैं, अंजीर के वृक्ष को श्राप देते हैं और दो पुत्रों और जमींदार के दृष्टांत के साथ धार्मिक अगुओं की निंदा करते हैं। 22 अध्याय राजा के पुत्र के विवाह भोज का दृष्टांत, हेरोदियों, सदूकियों और फरीसियों को उत्तर देकर चुप कराते हैं। 23 अध्याय यीशु शास्त्रियों और फरीसियों के विरोध चेतावनी देते और उनकी भत्सरना करते हैं, यरूशलेम की दशा पर रोते हैं। 24 और 25 अध्याय, जैतून में भाषण देना। यीशु जगत के अंत का चिन्ह और उसके फिर से आने के चिन्ह के प्रश्नों के बारे में उत्तर देते हैं। 10 कुंवारियों का दृष्टांत, 10 तोड़ों का दृष्टांत, भेड़ बकरी, राष्ट्रों का न्याय होना आदि का दृष्टांत। 26 अध्याय, यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र, बैतनिय्याह की मरियम द्वारा इत्र उंडेला जाना, यहूदा द्वारा बेचा जाना, अंतिम फसह के पर्व का पहले दिन प्रभु भोज का संपन्न करना, गतसमने में दुख उठाना, पकड़ा जाना और धार्मिक अगुओं के द्वारा दोषारोपण करना, पत्रस के द्वारा इनकार करना। 27 अध्याय, राजा की जांच या मुकदमा, मृत्यु और दफनाया जाना। 28 अध्याय, राजा का पुनरुत्थान, उसका महाआदेश। मित्रों, यहां रूपरेखा समाप्त हुआ। अब हम मत्ती की पुस्तक के पहले अध्याय में आते हैं और हम सबसे पहले वंशावली की ओर बढ़ते हैं, वंशावली जो मत्ती रचित सुसमाचार का आरंभ करती है। मित्रों, नया नियम धर्म ग्रंथों में अनेक बातों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण देता है और पूरी बाइबल इसकी यथार्थता पर निर्भर करती है। आप देखेंगे कि इसके 3 भाग हैं। पहला, इब्राहिम से दाऊद तक की वंशावली, पद 1-6 तक। दूसरा, सुलेमान से बेबीलोन की गुलामी में जाने तक की वंशावली, पद 7-11 तक। और तीसरा, बेबीलोन की गुलामी से यूसुफ बढ़ई तक की वंशावली, पद 12-17 तक। मित्रों, हमारे उत्पत्ति के अध्ययन में हमने देखा था कि यह पुस्तक परिवार के बारे में है, इसलिए वंशावलियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम नया नियम का अध्ययन आरंभ कर रहे हैं तो हम इसे यहां पर देख सकते हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आरंभ में यह पुस्तक आपको नीरस लगेगी। जब आप किसी को नया नियम की पुस्तक देते हैं तो वह मत्ती रचित सुसमाचार से आरंभ करता है और उनके सामने वंशावली आती है और वे इस वंशावली के साथ अधिक दूरी तय नहीं कर पाएंगे। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसने 1000 नए नियम काम करने वालों में बांट दिए हैं और उसने देखा कि सब लोगों ने नए नियम की पुस्तक में से मत्ती रचित सुसमाचार को सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए पढ़ा। उन्होंने वंशावली से पढ़ना आरंभ किया और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसे लगा कि यह पुस्तक उनके लिए नहीं है। हम उन पर दोष नहीं लगा सकते। मेरे कहने का मतलब है कि हमें दूसरों को सुसमाचार देने के लिए थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। औसतन लोगों को सुसमाचार की अन्य पुस्तकों को पहले देना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार को देने के बदले में उन्हें विशेषकर मरकुस रचित सुसमाचार देना चाहिए। परंतु यह बातें किसी भी रीति से वंशावली के महत्व को कम नहीं करती है। मित्रों, नया नियम इस वंशावली पर आधारित है क्योंकि यह इब्राहिम और दाऊद के वंश से यीशु मसीह के आने की सत्यता की स्थापना करती है, इसलिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। इब्राहिम का वंश उसे राष्ट्र में रखता है और दाऊद का वंश उसे सिंहासन पर बैठाता है। वह राजघराने के वंश से है। इसराइल जाति के लिए वंशावली बहुत ही महत्वपूर्ण थी और उसी के आधार पर यह निर्णय होता था कि वह किस विशेष वंश से है। उदाहरण के रूप में, जब इसराइल बंधुभाई से वापस लौटा, जिसे हम एजरा की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 62 पन्ने में पाते हैं, लिखा है, इन लोगों ने पैतृक सूची में अपना नाम ढूंढा परंतु ना पाया, अतः वे अशुद्ध ठहराए जाकर याजकीय पद से हटा दिए गए। मित्रों, एजरा के दिनों में यह संभव था कि लेवी जाति के लोग रजिस्टर में अपना नाम ढूंढ सकते थे और उनके नामों को वे हटा देते थे जो अपना नाम सूची में होने का गलत या झूठा दावा करते थे। वास्तव में ये वंशावलियां सरकार के द्वारा रखी गई थी और ये लोगों की पहुंच में रखी जाती थी ताकि लोग उसे देखकर अपना नाम ढूंढ सके। मेरी एक धारणा है कि वे उसे मंदिर में रखते थे क्योंकि इसराइल एक धर्म प्रांत देश था और वास्तव में कलिसिया और राज्य एक थे। अर्थात यह वंशावली प्रकट रूप में रखी गई थी, जिसे हो सकता है कि एडी 70 में यरूशलेम का मंदिर नाश होने तक लोगों की सूची में से प्रतिलिपित किया जा रहा होगा। यीशु मसीह के शत्रु संभवतः उसे देख सकते थे और संभवतः उन्होंने किया भी। यह मजेदार और महत्वपूर्ण बात है क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की प्रत्येक चाल को चुनौती दी, यहां तक कि उसके बलिदान और पुनरुत्थान के विषय में भी एक वर्णन दिया, परंतु उन्होंने उसकी वंशावली पर कभी भी प्रश्न नहीं उठाया। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उन्होंने जांच पड़ताल की और उसे बिल्कुल यथार्थ या सत्य पाया। मित्रों, यह बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यीशु मसीह को एक अनोखे स्थान पर रखता है। आप सबको याद होगा कि यीशु मसीह ने कहा कि चरवाहा द्वार से प्रवेश करता है, परंतु चोर और डकैत दीवार फांदकर किसी दूसरे रास्ते से प्रवेश करते हैं ताकि वे भेड़ों की झुंड में पहुंच जाएं। आप योहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 1 और 2 पद को देख सकते हैं। वह झुंड इसराइल राष्ट्र है। वह दीवार पर चढ़कर पीछे या दूसरे मार्ग से उस झुंड तक नहीं आया और वह गलियारे में से होकर भी नहीं आया था। वह द्वार से होकर आया था और वह दाऊद और इब्राहिम के वंश से पैदा हुआ। यही बात है जिसे मत्ती हमारे सामने रख रहे हैं। जो बातें पुराने नियम में बताई गई वो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई। इसलिए यीशु मसीह के शत्रु वंशावली के सिलसिले में उसे चुनौती नहीं दे सकते, तो वे उसे चुनौती देने के लिए दूसरा मार्ग ढूंढने लगे और वास्तव में उन्होंने किया भी। मित्रों, मैं एक बाइबल अध्ययन सभा में जाता हूं जो बहुत ही रुचिदायक समूह है। एक बार मैंने समूह से पूछा कि आप में से कितने लोगों ने साल में एक बार बाइबल पढ़कर समाप्त की है, परंतु किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। कुछ समय के बाद एक हाथ उठा और उसने बताया कि उसने बाइबल पढ़ी तो है, लेकिन सिर्फ अच्छे लगने वाले हिस्सों को ही पढ़ा है, वंशावलियों को छोड़ दिया क्योंकि वे नीरस लग रही थी। मेरे मित्रों, मैं सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने हमें ये वंशावली दी है तो अवश्य ही हमारे लिए इसका कोई महत्व होगा, क्योंकि इसको छापने में जो स्याही और परिश्रम लगे हैं वे भी व्यर्थ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मत्ती रचित सुसमाचार की इस वंशावली को लिख लें, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह की वंशावली यूसुफ की तरफ से है, और हम दूसरी वंशावली को लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे जो मरियम की ओर से है। तो आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्राहिम की वंशज, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। मित्रों, ध्यान दें, वंशावली की पुस्तक एक वाक्यांश है जो मत्ती की विशेषता है। यह एकमात्र वाक्यांश है जिसे आप पूरे नए नियम में कहीं भी नहीं पाएंगे। यदि आप पुराने नियम में पीछे से आरंभ करके, जैसे मलाकी की पुस्तक से आरंभ करके जकरिया और हगै तक, और फिर पंचग्रंथ में व्यवस्था विवरण से गिनती, लय व्यवस्था, निर्गमन, तब उत्पत्ति तक जाएंगे, तो आप लगभग इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि यह वाक्यांश पूरी बाइबल में सिर्फ मत्ती रचित सुसमाचार के सिवाय और कहीं भी नहीं पाया जाता है। लेकिन जब आप अचानक से उत्पत्ति की पुस्तक के 5वें अध्याय में आते हैं तो आप देखेंगे जहां पर लिखा हुआ है, उत्पत्ति 5 अध्याय के 1 पद में, यह आदम की वंशावली का लेख है। मित्रों, यहां पर फिर से वही अभिव्यक्ति है। 2 पुस्तकें हैं, आदम की वंशावली की पुस्तक और यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। आप आदम की परिवार में कैसे गए? आप पैदाइश या जन्म से ही उसमें हैं। आपने कुछ नहीं किया और वास्तव में आपको उसके साथ कुछ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, परंतु उसी तरह से मैं और आप आदम की परिवार में शामिल हैं। हम जन्म के द्वारा ही वहां हैं, जैसे रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु आदम में सब मरते हैं या मृत्यु को प्राप्त करते हैं। आदम की पुस्तक मृत्यु की पुस्तक है। इसके बाद दूसरी एक पुस्तक है, यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक। आप इस परिवार में कैसे गए और इस वंशावली में कैसे शामिल हुए? आप इसमें नए जन्म के द्वारा प्रवेश करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय इसके 3 पद में प्रभु यीशु कहते हैं, स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए नया जन्म का होना आवश्यक है, और यही है जो हमें मेमने की जीवन की पुस्तक में रहता है। और हम सब यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा वहां पहुंचते हैं। हम सब लोग पहली पुस्तक में हैं, आदम की वंशावली की पुस्तक। मेरे मित्रों, मैं यह विश्वास करता हूं कि आप मेमने के जीवन की पुस्तक में भी हैं। मत्ती कहता है, यीशु दाऊद की संतान, इब्राहिम की संतान है। क्या मत्ती को यह मालूम नहीं था कि इब्राहिम दाऊद से पहले आया था? क्योंकि वंशावली के बाकी हिस्से में वो स्पष्ट करता है उसने ऐसा क्यों किया। वह प्रभु यीशु मसीह को यहां पर मसीहा के रूप में दर्शा रहा है, वह जो एक राजा है और वह जो स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करेगा, और यह सबसे पहले आता है कि वह दाऊद के वंश से हो, ताकि जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने दाऊद को दी थी पूरी हो कि वह दाऊद की संतान है। मित्रों, वह इब्राहिम की भी संतान है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह इब्राहिम की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय उसके 18 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तेरे वंशजों के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगे। और गलतियों की पत्री 3 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस कहते हैं, अतः प्रतिज्ञाएं इब्राहिम और उसके वंशज से की गई थी, शास्त्र नहीं कहता और वंशजों से जैसे बहुतों की ओर संकेत कर रहा हो, परंतु इसके बदले एक ही ओर और तेरे वंशज से, जो मसीह है। मित्रों, इसलिए यीशु मसीह इब्राहिम की संतान है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 2-6 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, तथा यहूदा और तामार से फिरिस व जेरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हेस्रोन और हेस्रोन से एराम, तथा एराम से अम्मीनदाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनदाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से ईशय, और ईशय से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। मित्रों, वंशावली को ध्यानपूर्वक देखने से यह न केवल मजेदार है पर वास्तव में यह उत्तेजित करने वाली है। यहाँ 4 नाम उभर कर आते हैं, जैसे मानो उन्हें 9 जातियों में से रखा गया हो। यह चौंकाने वाली बात है कि वे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हैं। सबसे पहले वे नाम महिलाओं के हैं और दूसरा वे नाम अन्य जातियों में से हैं। मित्रों, रीति रिवाज के अनुसार इब्रानियों की वंशावली में महिलाओं के नाम नहीं आते हैं, परंतु इसमें हम कोई भी गलती नहीं पाते हैं। इसका साधारण सा कारण है कि आज हम भी उसी चीज को करते हैं। किसी भी विवाह में जब दंपति का नाम लिया जाता है तो पुरुष ही का नाम लिया जाता है कि वे किसी स्त्री का नाम नहीं लेते हैं। स्त्री का वंश समाप्त होता है और पुरुष का आगे चलता है, और यही कारण है कि आज भी ऐसा ही करते हैं, और उसी प्रकार से उन्होंने भी उस समय किया। पिछले कई वर्षों में मैंने बहुतों को विवाह विधियों में संपन्न होते हुए देखा है, और कई लड़कियों को अपने अच्छे नाम को जोड़कर उस नाम को अपनाना पड़ता है जो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यह परंपरा है। आज भी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक परिवार के बारे में मैंने सुना कि उन्होंने एक असाधारण काम किया कि परिवार के नाम में महिला का नाम चढ़ाया, और मैं समझ सकता हूँ कि यह सब कानून की सहायता के द्वारा संभव हो सका, परंतु हमारा रिवाज है कि हम पुरुष का नाम लेते हैं और यह पुरुष की वंशावली है जो हमें दी गई है। मित्रों, यीशु मसीह के दिनों में भी किसी महिला का नाम वंशावली में पाना असाधारण सी बात थी, फिर भी यहाँ पर हम 4 नाम पाते हैं। वे सिर्फ 4 महिलाएं ही नहीं, वे 4 अन्य जातियां हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा कि उसके लोग अन्य जातियों के साथ विवाह ना करें जो विधर्मी और मूर्ति पूजक थे। यहां तक कि इब्राहिम को भी परमेश्वर ने निर्देश दिया कि वह अपने बेटे इसहाक के लिए अपने लोगों के बीच में से ही बहू लाए, और वही बात इसहाक के द्वारा भी याकूब के लिए की गई। यह सब परमेश्वर की व्यवस्था थी कि जो यीशु मसीह की ओर ले जाने वाले वंश या सूची में है, फिर भी उनके लिए एक ईश्वरवाद ही प्रबल विश्वास हो। उसकी वंशावली में 4 अन्य जाति की महिलाएं हैं, उनमें से 2 कनानी थी और 1 मुआबी थी, और चौथी वाली हित्ती थी। अब स्वाभाविक तौर पर प्रश्न पूछेंगे कि वे कैसे यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हो गए। मित्रों, तामार सबसे पहले वाली है, जिसका नाम पद 3 में आता है। उसकी कहानी को हम उत्पत्ति 38 अध्याय में पाते हैं, जहां पर उसे तामार कहा गया है। वह अध्याय बाइबल का सबसे बुरा अध्याय है। तामार इस वंशावली में शामिल हुई क्योंकि वह एक पापिन थी। राहाब अगला नाम है जो पद 5 में आता है। उसका चरित्र उतना अच्छा नहीं था, जैसे कि हम यहोशू की पुस्तक उसके 2 अध्याय में उसकी कहानी को देखते हैं। वहां पर उसे राहाब कहा गया है, परंतु वह बाद में एक अद्भुत स्त्री बनी जब उसने जीवित और सच्चे परमेश्वर के बारे में जाना। तब इब्रानियों के पत्री 11 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, विश्वास ही से राहाब वेश्या भी आज्ञा न मानने वालों के साथ नाश नहीं हुई, क्योंकि उसने गुप्तचरों को कुशलता से रखा था। उसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में सिर्फ एक साधारण कारण से शामिल किया गया, और वह है उसका विश्वास। उसके पास विश्वास था। यहाँ पर आप इसकी प्रगति पर ध्यान दीजिए। एक पापी के रूप में आती है और तब विश्वास के हाथ को थाम लेती है। इसके बाद तीसरे स्थान में रूत का नाम पांचवें पद में आता है। वह एक अच्छी स्त्री है और आप उसके साथ कोई भी गलती नहीं पाएंगे, परंतु रूत के समय में एक व्यवस्था थी जिसने उसे बाहर कर दिया था, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि कोई भी मुआबी या अमोनी परमेश्वर की मंडली में प्रवेश ना करे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 पद में आप देख सकते हैं। यद्यपि व्यवस्था ने तो उसे बाहर ही रखा था, पर एक व्यक्ति जिसका नाम बोअज था, वह एक दिन अपने खेत में गया और उसने उसे अर्थात रूत को देखा, और यह पहली ही नजर का प्यार था। अब हो सकता है आप यह नहीं जानते हैं कि मैं पहली नजर के प्यार में विश्वास करता हूं या नहीं। बोअज पहली ही नजर में रूत से प्यार करने लगा और उसने अपने अनुग्रह को उस पर, अपने लबादा या वस्त्र को उसके चारों ओर लपेटने व ढकने के द्वारा, और उसे अन्य जाति में से इसराइल की मंडली में लाने के द्वारा किया। हम रूत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ सकते हैं। उसने पूछा, क्या कारण है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई? ठीक उसी प्रकार का प्रश्न मैं और आप भी परमेश्वर से पूछ सकते हैं हमारे ऊपर उसके अनुग्रह के बारे में जो उसने हम पर किया है। यहां पर फिर से प्रगति पर ध्यान दीजिए। हम पापी के रूप में आते हैं और विश्वास के हाथ को थामते हैं, और वह हमें अपने अद्भुत अनुग्रह से बचाता है। अब चौथी महिला बेतशेबा है, जिसे नाम से यहां पर नहीं पुकारा गया है, लेकिन कहा गया है जो पहले उरिया की पत्नी थी। हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 6 पद में पाते हैं। उसका नाम नहीं लिया गया है क्योंकि यह उसका पाप नहीं था, यह दाऊद का पाप था, और इसके लिए दाऊद को ही कीमत चुकानी थी, और उसने इसको चुकाया भी। वह मसीह की वंशावली में शामिल हो गई क्योंकि परमेश्वर अपने संतानों में से एक को बाहर नहीं फेंक देता। जो पाप करता है उसे वह कभी भी अलग नहीं करता। एक भेड़ झुंड से बाहर जा सकती है और एक खोया हुआ भेड़ बन सकती है, परंतु हमारा एक चरवाहा है जो भेड़ के पीछे जाता है और हमेशा उसे लेकर वापस झुंड में शामिल कर देता है। वो दाऊद को वापस लाया, और इस प्रकार यहां इस वंशावली में पूरे उद्धार की कहानी है। मित्रों, अब और कुछ रुचिदायक बातें इस वंशावली के बारे में है। यदि आप इसकी तुलना पहला इतिहास 3 अध्याय से करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ नाम अलग हैं, जिसे आप मत्ती रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 8 पद में पाएंगे। अहाजिया, एवास और अमाजिया का नाम इसमें नहीं है। इससे यह पता चलता है कि वंशावलियां हमें कुछ विशेष और निश्चित वंश को दिखाने के लिए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का नाम सभी वंशावली में शामिल करने की आवश्यकता बाइबल में नहीं समझी गई है। मैं सोचता हूं कि हमें यह याद रखना चाहिए कि वंशावलियां जो हमें उत्पत्ति की पुस्तक में दी गई है वे जल प्रलय से पहले की है। इसलिए यह कोई जरूरी नहीं है कि ये वंशावलियां पूर्ण है, परंतु वे हमें कुछ निश्चित वंशज का पता लगाने के लिए दी गई है। मैं व्यक्तिगत रीति से यह मानता हूं कि मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत लंबे समय से रह रहा था, इससे भी अधिक जितना विद्वान इसकी अवधि को बताते हैं, और हम इसे बाइबल की बहुत सी व्याख्याओं या टिप्पणियों में पाते हैं। इस बात को याद रखें कि यह दिन और तिथि विद्वानों के द्वारा दी गई है जो बाइबल का हिस्सा नहीं है। वे झूठी हैं और वे उनमें से नहीं है। हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 10 और 11 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ, और मनश्शे से आमोन, तथा आमोन से योशिय्याह, और बेबीलोन को निर्वासित होते समय योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। मित्रों, हम पद 11 में देखते हैं कि मत्ती यहोयाकीम को देते हैं, परंतु यकुन्याह को शामिल करते हैं। यकुन्याह को हमारे विशेष ध्यान का पात्र होना योग्य है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसका कोई भी वंशज सिंहासन पर नहीं बैठेगा। इसे हम यर्मिया की पुस्तक 22 अध्याय उसके 24 और 30 पद में इस प्रकार से देखते हैं। मेरे जीवन की सौगंध, यहोवा कहता है, यहूदा का राजा यहोयाकीम का पुत्र कन्या चाहे मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी ही क्यों ना होता, फिर भी मैं उसे निकाल फेंकता। यहोवा यूं कहता है, इस मनुष्य को निर्वंश लिखो। ऐसा मनुष्य जो अपने जीवन काल में संपन्न नहीं होगा, क्योंकि इसके वंश का कोई भी पुरुष दाऊद के सिंहासन पर बैठकर अथवा पुनः यहूदा का शासक बनकर संपन्न नहीं होगा। मित्रों, यकुन्याह के पाप के कारण उसके वंश से कोई भी व्यक्ति दाऊद के सिंहासन पर बैठने ना पाएगा। आप देखें कि यूसुफ इसी वंशज से है, लेकिन यूसुफ यीशु का स्वाभाविक पिता नहीं है। यह एक बहुत ही विलक्षण सत्य है जो शास्त्र में है, और मती इसे हमें स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसुफ ने यीशु को एक शीर्षक या गोत्र दिया, और यह एक कानूनी अधिकार था, और यह दाऊद के सिंहासन पर, क्योंकि यूसुफ मरियम का पति था, वह जिसने यीशु को जन्म दिया। यीशु मसीह यूसुफ की संतान नहीं था और न ही वह यकुन्याह की संतान था, परंतु दोनों ही यूसुफ और मरियम दाऊद के वंशज से थे, और वे दोनों दो अलग अलग वंशज और दाऊद के दो अलग पुत्रों से थे। हम इसे लुका रचित सुसमाचार में देखेंगे जब हम उसमें पहुंचेंगे, मरियम के वंशज को दाऊद के पुत्र नातान से होते हुए। मित्रों, यूसुफ का वंशज राजसी वंशज है, वह सुलेमान के वंशज से आता है, इसलिए यूसुफ और मरियम दोनों को बैतलहम जाना पड़ा ताकि वे जनगणना में अपना नाम लिखवाएं, क्योंकि वे दोनों ही दाऊद के वंशज से थे। आप यहां पर देखेंगे कि यह वंशावली कितनी रुचिदायक, मनोहर और महत्वपूर्ण है, और ये हमारे अध्ययन के लिए भी कितनी कीमती है। अब वंशावली इस पद के साथ समाप्त होती है जिसे हम मती रचित सुसमाचार एक अध्याय के 16 पद में पढ़ते हैं, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। मित्रों, आप यहां पर देखेंगे कि यह पद उस तरीके को तोड़ता है जो पद 2 में आरंभ हुआ था, जहां इस प्रकार से कहा गया था कि इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसके बाद से बहुत से लोग उत्पन्न हुए, और पद 16 यह कहते हुए आरंभ करता है कि याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। हो सकता है कि आप यह उम्मीद करते हो कि यह और आगे बढ़े और कहे कि यूसुफ से यीशु उत्पन्न हुआ, परंतु यह ऐसा नहीं कहता है। इसके बदले में कहता है याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुआ जो मसीह कहलाता है। वास्तव में मती इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि यूसुफ यीशु का पिता नहीं है, यद्यपि वह मरियम का पति है, पर वह यीशु का पिता नहीं है। इसका स्पष्टीकरण क्या है? मती ठीक है, बाकी के अध्यायों में हमें इसका विश्लेषण या स्पष्टीकरण देखने को मिलेगा, और हमें वह दिखाएंगे कि कैसे पुराने नियम की भविष्यवाणी पूरी होती है। मित्रों, यहाँ पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर इस वंशावली के साथ ही समाप्त करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अब वंशावली के महत्व को समझ गए होंगे और आगे को अवश्य ही ध्यान देंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा हिंदी कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको जरूर लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को और अधिकाई से पढ़ना चाहते हैं, तो हम आपको बता दें कि हमारे पास पवित्र शास्त्र बाइबल एवं नया नियम उपलब्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, किए गए है कलिया नई, यीशु बाहर लाया है।
जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलिया।